subjects
हम सब पर निर्भर है.
Not by mortal authority, but by the impressions of the Spirit.
कभी-कभी ये जो टॉक्स असाइन होता है हमको, वो हम पवित्र आत्मा से बताया जाता है.
But just as Jesus did not teach how to overcome the mortal challenges or political oppression of his day, he usually inspires his modern servants to speak about what we must do to reform.
यीशु मसीह चाहता है कि आज हम कि हम क्या अपने विषय के बारे में बतलाएं. मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे विषय के बारे में बताऊं कि यीशु मसीह के जो जिसने हमें सिखलाया है. बीज बोने वाले का नीति कथा मत्ती, मार्क और लूक में पाया जाता है, कुछ अन्य कथाओं के साथ. ये उन नीति कथाओं में से भी है जो यीशु ने अपने चेलों को समझाया था. जो बीज बोया गया था वो था राज्य का वचन, था वचन परमेश्वर का वचन, स्वामी और उनके सेवकों का शिक्षा. जिन अलग अलग मिट्टियों पर वो बीज गिर रहे थे ये दिखलाता है कि हम मरणशील लोग किस तरह से शिक्षण को हासिल करते हैं और निभाते हैं. इसलिए जो बीज मार्ग के किनारे गिरे थे अब तक मरणशील धरती तक नहीं पहुँचे जहां वो उस उग सके. वो उन शिक्षकों की तरह है जो कठोर हृदय वाले या अप्रस्तुत लोगों को सुनाई देता है. मैं इनके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा. मेरा संदेश उन सब के लिए है जो मसीह के चेलों बनने के लिए तैयार है. इस जीवन के दौरों हम मसीह के शिक्षणों का क्या करें. बीज बोने वाले का नीति कथा हमें स्थितियों और व्यवहार पर चेतावनी देता है. जिस उसमें चार संदेश के बीच को पाए किसी व्यक्ति को इस फसल लाने को राज्य के लिए. कुछ बीज पथरीला भूमि पर गिरा या उनको बहुत मिट्टी ना मिली. यीशु ने समझाया कि इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने जब वचन को सुना तुरंत ही आनंद से ग्रहण कर लिया, मगर क्योंकि उनमें जड़ नहीं था जब दुख या तकलीफ आई वचन के कारण तुरंत ही वो ठोकर खाते रहे. सुनने वाले क्यों जड़ नहीं पकड़ते. यही होता है नए सदस्यों के साथ जो सिर्फ प्रचारकों के आकर्षित होते या गिरजाघर के विभिन्न विनेशताओं से या गिरजाघर सदस्य के फायदाओं से, क्योंकि इन लोगों के विश्वास का जड़ उधारकर्ता पर नहीं. जब विपत्ति आती है वो ठोकर कर बेकार सकते हैं, मगर जो लोग गिरजाघर में बड़े होते हैं, लंबे समय के सदस्य, वो ऐसी स्थिति में जा सकते हैं जो जहां उन्हें खुद में जड़ नहीं मिलेगी. मैंने ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनका समर्पण ठोस और आनंद नहीं होता है यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए. अगर हम सुसमाचार के शिक्षकों को अच्छी तरह नहीं जानते हैं और लगातार निभाते नहीं, हम में से किसी का भी हृदय कठोर हो जाएगा. जो पथरीला भूमि है धार्मिक बीचों के लिए, धार्मिक भोजन जरूरी है धर्म में आगे बढ़ने के लिए, खासकर ऐसी दुनिया में जो परमेश्वर में कम विश्वास रखती है. इंटरनेट के आज जाने से वह विश्वास बढ़ाने वाले संदेशों की निंदा करती है. हमें आत्मिक सच्चाई को हमारे लिए बढ़ाने के लिए हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना होगा और सुसमाचार में जड़ पकड़ने रहना होगा. जवान लोगों, अगर ये शिक्षण बहुत आम है तो ये लो एक विशिष्ट उदाहरण. अगर प्रभु भोज के चिन्ह बातों जा रहे हैं और तुम टेक्स्ट भेज रहे हो या फुसफुसा रहे हो या वीडियो गेम खेल रहे हो, जो धार्मिक भोज लिए तुम अपने धार्मिक यादों को छोड़कर मार रहे हो, तुम खुद को कमजोर बना रहे हो. ये सब बुजुर्गों के लिए भी सही है। धार्मिक जड़ों को नष्ट करने वाला एक और विनाशी हो सकता है जो टेक्नोलॉजी से आएगा, बड़ा होता है पर उसके लिए नया नहीं है। जब हम सुषमाचार या गिरजाघर कर एक पहले से परखते हैं, ये नजरिए केंद्रित होता है एक नेता के एक खास सिद्धांत या दस्तूर या देखे दोष पर और सुषमाचार के महान योजना को और उसके फसल के निजी और सामुदायिक आशीर्वादों को नजरदास कर देता है। प्रधान गोर्डन बी हिंकली ने इसके बारे में पहलू को पकड़ने की बात को अच्छी तरह से समझाया। उसने एक भिवायु सभा को राजनीति प्रशंसकों के बारे में बताया जो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे उस वक्त के एक सुषमाचार सूचना के दौरान। उन्होंने कई बातें क्रोध में और अपने अपमानित करने के लिए कही थी। अंत में उसके कहा जरूर से इस तरह से बताया करना जो बहुत प्रदेश हो गया है। दूसरी तरह से सुषमाचार में जमे रहना के लिए हमें आलोचना कम करनी चाहिए और हमेशा परमेश्वर के महान कार्य के भारी नजरिए पर ध्यान देना चाहिए। यीशु मसीह ने सिखलाया कुछ जड़ियां में गिरे और जड़ियां ने बदल कर उसे दबा दिया और वो फल ना दिया। उसने समझाया कि ये वो है जो वचन सुनते हैं और सुषमाचार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें सुषमाचार वचन को दबा देता है और वो निष्फल रहता है। ये वास्तव में हम सब के लिए एक चेतावनी है। मैं पहले धन पर धोखों पर कहूँगा, जहाँ पर भी हम अपने धार्मिक यात्रा में हमारे धार्मिक परिवर्तन की जो भी स्थिति होती है, हम सबको एक इस बहकावे का सामना करना पड़ता है जब व्यवहार या प्राथमिकताएं संपत्ति पाने, इस्तेमाल करने या अपने पर क्रेडिट हो जाए, हम उसे दुनिया से लगाव कहते हैं। जो सफलता पर विश्वास करते हैं वो धन के धोखे से पीड़ित हैं। धन रखना या बड़ी पगर स्वर्गीय कृपा का चिन्ह नहीं है और उसकी काम स्वर्गीय अंतोष का चिन्ह नहीं है। जब यीशु ने एक विश्वासित चेले को कहा कि वे आनंद जीवन पा सकता है अगर वो अपने सब कुछ गरीबों में बांट दे, उसने ये नहीं कहा कि धन क्षमा करने में बुराई है मगर जमा करने में बुराई है मगर बुराई है किस तरह से इससे प्रतिव्यवहार करते हैं। जबकि हम सब जानते हैं यीशु ने अच्छे समर्थन की बधाई की जिससे वह धन इस्तेमाल किया था। सब बुराई का जड़ धन नहीं है मगर धन से प्रेम है। मर्मन धर्मशास्त्र में उस समय के बारे में लिखा है परमेश्वर का गिरजाघर की प्रगति रखने लगी थी क्योंकि गिरजाघर के सदस्य संस्कारिक धन संपत्ति और व्यक्ति को वस्तु में मन लगा रहे थे जिनके पास भी कई संसारिक संपत्तियां होती है। धार्मिक को सबसे छोटे झाड़ियां जिससे सुषमाचार के वचन का प्रभाव हमारे जीवन से निकलते हैं वो जिसके बारे में यीशु ने कहा इस जीवन के चिंताओं और धन से सुविधाएं, ये बहुत ज्यादा है कहने के लिए कुछ उधार ठीक रहेंगे। एक बार जो यीशु ने अपने मुख्य चेलों को देता पीटर से कहता हुए तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर को बता पर नहीं परंतु मनुष्य की बताव पर मन लगा रहा है। मनुष्य के चीजों को महत्व देने का मतलब है दुनिया की चेतावनी को महान महानता देना, परमेश्वर की बातों को हटा कर के हमारे कार्यों, प्राथमिकताओं और हमारे धन्य में, जब हम उन चीज़ों के आदि हो जाते हैं इस जीवन के सुखों की और समर्पित हो जाते हैं, जिससे परमेश्वर के अनमोल चुनने की शक्ति भंग हो जाती है। जब हम छोटे मोटे भेकाओं में से मोहित हो जाते हैं, ये हमें आनंद जरूरतों वाले चीज़ों से दूर ले जाते हैं। और जब हम सोचेंगे कि हमारे सिर्फ अच्छा होना चाहिए, इससे हमारे अंदर वो नीति बची रुक जाएगी और हमें आनंद लक्ष्य से के लायक बनती है। हम इस जीवन के चिंताओं से गिर जाते हैं जब हम भविष्य के डर से शिक्षित हो जाते हैं। परमेश्वर में उनके वेदाओं को करता है। 25 वर्ष पहले मेरे प्रिय बीवायु शिक्षित ह्यू के द्वारा पूछा गया था, क्या दुनिया की और हमारी जिम्मेदारी के बीच में कुछ है, क्या हम कर सकते हैं इस गिरजाघर में? उनका जवाब था, गिरजाघर में यही होता है, आ रहा है ना? यहाँ हमें तैयार रहना चाहिए किसी का अपमान करने के लिए, तुम्हें खतरा मोल लेने के लिए का इच्छा रखनी चाहिए। यही पर विश्वास आती है। हमारा जिम्मेदारी एक परीक्षा होनी चाहिए, उसके कठिन होना चाहिए और दुनिया के संबंध में असंबंधित होना चाहिए। इस सुसमाचार की आवश्यकता की पुष्टि बीवायु में ठोस की गई थी महीनों पहले, नाम छोटे कैथोलिक नेता चार्ल्स जे चप्रू द्वारा, जिन्होंने एलडीएस और कैथोलिक समाजों में जो समझाए सामान्य चेतावनी की पर बातें करते हुए, जैसे विवाह और परिवार हमारे लिंग पर बताते, मानव जीवन की शिक्षा पर और धार्मिक आज़ादी पर, उन्होंने कहा, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास के ही तरह लिए ये एक प्राथमिकता होना चाहिए, ना सिर्फ हमारे निजी या पारिवारिक जीवन में, पर हमारे गिरजाओं, घरों, राजनीतिक चुनाव पर और जिस और सभी जो हम करते हैं। ये है क्योंकि वो आवश्यक है, उसने और बतलाया, कैथोलिक अनुभव से सीखो। हम कैथोलिकों का विश्वास है कि हम समाज में कामिर बने रहे, मगर एक छोटा सा अंतर है समाज और कामिर बनना और समाज द्वारा हजम किया जाना। उद्धारकर्ता का चेतावनी है था कि दुनिया के चेतावनी कई हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को ना गायब कर दे। हमें चेतावनी देती है कि हम अटल रहें, हमारे दिल भी अटल रहे परमेश्वर के आज्ञाओं पर और उनके गिरजाघर के निर्देशन पर। उद्धारकर्ता के उदाहरण में हमें इस नीति कथा को भूमि का नीति कथा सोचने में मजबूत करता है। भूमि कितनी अच्छी तरह उस पर निर्भर है हमें अब हम में से जिसका दिल सुसमाचार के बीज से वाकिफ है। बीज बोने वाले का नीति कथा समाप्त हुआ। उद्धारकर्ता ने जब उस बीज के बारे में बताया, अच्छी भूमि पर गिरा और फल लाए अलग अलग मात्र में। हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं और अच्छी भूमि और अच्छा फल बनने के लिए? यीशु ने बतलाया कि अच्छी भूमि में वो है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभलते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हमारे पास सुसमाचार वचन का बीज है। ये हम सब पर निर्भर है कि हम चुने कि हम क्या करके अपने भूमि को अच्छे और फल को ज्यादा करें। हमें यीशु मसीह के सुसमाचार में जड़ पकड़ते और धर्म प्रवृत्त होना चाहिए। हम जानते हैं कि हम परिवारित हो गए हैं प्रार्थना, धर्मशास्त्र अध्ययन, सेवा और प्रभु भोज लगा कर लेने के लिए कि उनकी आत्मा हमारे साथ रहे। हमें हृदय में महान परिवर्तन भी लाना चाहिए जो बुरे इच्छाओं और स्वार्थी मतलबों को परमेश्वर के प्रेम और उनकी और उनके बच्चों के सेवा से बदलते हैं। मैं इन बातों की सच्चाई हमें उद्धारकर्ता यीशु मसीह की गवाही देता हूँ, जिसके शिक्षाओं और रास्ते दिखलाते हैं, जिसके प्रायश्चित से ये सब मुमकिन है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।